नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में कहा है कि मोदी सरकार ने रोजगार सृजन और विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में मजबूत अवसंरचना और श्रम प्रधान क्षेत्रों पर बल दिया है। लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस वर्ष के बजट में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के लिए 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। ये सकल घरेलू उत्पाद का 3.1% है और 2025-26 के संशोधित अनुमानों से 11.5% अधिक है। उन्होंने विपक्ष के रोजगार सृजन के बारे में कुछ नहीं करने के आरोपों का खंडन किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देंगे।
5 रीजनल मेडिकल हब्स मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उसके साथ साथ 1 लाख अपॉर्चुनिटीज इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स उस एक स्कीम के द्वारा होने वाले हैं, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के उस बड़ा स्कीम के द्वारा। फिर 5 न्यू इंडस्ट्रियल टू टेक्सटाइल सेक्टर टू लेदर सेक्टर मेजर पार्क्स जो बना रहे हैं, उसमें भी उद्योग और जॉब्स होने का संभावना क्लियरली दिखता है।
इससे पहले लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अरुण भारती ने बजट को देश के विकास का बजट बताया। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के इंद्र हांग सुब्बा ने कहा कि बजट में समाज के सभी वर्गों को केंद्र में रखा गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि बजट पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है।
The budget recognizes
केंद्रीय बजट में कुछ भी ठोस नहीं है। बजट AI पर केंद्रित है। AI के कारण इंजीनियरिंग और IT क्षेत्र में कई नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां ऊर्जा और वित्त को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। भू राजनीतिक संघर्ष तीव्र हो रहा है, लेकिन बजट में इस संघर्ष से निपटने के उपायों का कोई जिक्र नहीं है।
उधर राज्यसभा में भी बजट पर चर्चा हुई। IUML के हारिस बीरन ने आरोप लगाया कि बजट में किसानों और मछुआरों के लिए कुछ भी नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने कहा कि भारत में विश्व का नेतृत्व करने की प्रतिभा, उद्यमशीलता और महत्वाकांक्षा है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान आधारहीन बयान देकर सदन को गुमराह करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस भेजेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निराधार और झूठे आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बजट सत्र के दूसरे चरण में विचार किया जाएगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। इससे पहले लोकसभा सचिवालय ने प्रस्ताव के नोटिस में कुछ कमियां पाई हैं। अध्यक्ष ओम बिरला ने सचिवालय को नोटिस की कमियों को दूर करने और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आगे कार्रवाई का निर्देश दिया है। सरकार ने भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जब भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एक साथ गाए जाएं, तो राष्ट्रगीत के सभी पहले 6 छंद गाना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राज्यपालों के संबोधन जैसे प्रमुख राजकीय अवसरों पर पूर्ण 6 पैरा वाला राष्ट्रगीत गाया जाना अनिवार्य होगा। बांग्लादेश में आज होने वाले राष्ट्रीय चुनाव के लिए अंतिम सुरक्षा और तैयारियां चल रही हैं। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पुलिस और अन्य सहायक बलों को तैनात किया गया है ताकि सुरक्षित और सुचारू मतदान सुनिश्चित किया जा सके। मुंबई में ICC 2020 क्रिकेट विश्व कप में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 30 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 196 रन बनाए। 197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 166 रन पर सिमट गई। वहीं कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रन से हरा दिया है। आज ही खेले गए एक अन्य मैच में दक्षिण अफ्रीका ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रोमांचक डबल सुपर ओवर मुकाबले में अफगानिस्तान को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।